मेरे नौजवान दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत आज मैं किस विषय पर बात करूंगा इसके बारे में बाद में डिसाइड करेंगे। पहले जो दूसरी खबरें हैं आइए उन्हें देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि कितना वक्त बच जाता है, उसी के आधार पर फिर मैं आपको मुख्य विषय के बारे में बताऊंगा। हालांकि मुख्य विषय के बारे में मेरे दिमाग में विषय है। पहली खबर आज के अखबारों में आपने ये खबर पढ़ी होगी कि फिजी में बकायदे हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। होने क्या जा रहा है, आज शुरू हो गया है विश्व हिंदी सम्मेलन और इसमें भाग लेने के लिए हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी वहां पहुंच चुके हैं और हमारे यहां से डेलीगेशन जाता है, उसमें लेखक होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, भाषाविद होते हैं, भाग लेने के लिए वहां पहुंच गए हैं। ये खबर आपने अखबारों में पढ़ी होगी। उसी खबर के दौरान एक दो बातें और भी कही गई हैं, मुझे लगता है कि वे बातें मुझे बतानी चाहिए। पहला तो यह है कि जो फिजी है बेसिकली वहां भारतीय मूल के लोगों को बहुत पहले भेजा गया था। फिजी, ट्रिनिडाड, मॉरिशस, इन देशों के नाम आप सुनते हैं, है ना? ये अंग्रेजों के अधीन टापू हुआ करते थे और वहां जनसंख्या नहीं के बराबर थी। अंग्रेजों के अधीन थे तो वहां खेती बाड़ी करने के लिए अंग्रेजों को नौकरों की जरूरत थी, श्रमिकों की जरूरत थी, कहना चाहिए, नौकर शब्द ठीक नहीं, श्रमिकों की जरूरत थी। तो भारत से श्रमिक वहां भेजे गए, बकायदे कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित श्रमिक वहां भेजे गए कि चलो दो साल के लिए, चार साल के। लेकिन वहां जाने के बाद बहुत से श्रमिक वहीं रह गए जिन्हें हम कहते हैं भारतीय मूल के लोग। चूंकि ये लोग गए और फिर इनकी आबादी बढ़ती चली गई तो वहां हिंदी भाषा काफी बोली जाती है और भी हमारे देश के जो दूसरे राज्यों से गए उनकी भाषा बोली, जैसे अवधी है, ब्रज है, मैथिली है, साउथ इंडिया की कुछ भाषाएं हैं वे वहां बोली जाती है। रामचरितमानस वहां बड़ा लोकप्रिय है, हनुमान चालीसा बड़ा लोकप्रिय है, क्योंकि कुछ देशों में मुझे जाने का मौका मिला है, पता लगा कि वहां के घरों में आप चले जाइए तो उनके आंगन में बकायदे आपको तुलसी का पौधा मिल जाएगा, उनके घरों में झंडे लहराते हुए मिल जाएंगे, यानी कि वो भारतीय संस्कृति को अभी भी बनाकर चल रहे हैं। जैसे अगर हम फिजी की ही बात लें तो वहां 37% सिर्फ भारतीय मूल के लोग हैं। इसीलिए कभी कभी आप सुनते होंगे कि वहां भारतीय मूल का जो व्यक्ति है राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना, है ना, इस तरह की खबरें आप सुनते हैं। जो एक दो और महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये कि बकायदे फिजी ने इस बात की घोषणा की है कि अब वहां के जो संसद का काम काज है वह हिंदी में भी होगा, ठीक है। दूसरी बात कि भारत लगातार इस कोशिश में है कि किस तरीके से हम हिंदी को संयुक्त संघ की भाषा बना सकें, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। अब यहां पर एक सवाल उठता है फ्रेंड्स, और वो ये है कि हम विश्व हिंदी सम्मेलन कर रहे हैं, 1975 से ये चल रहा है, इतने साल हो गए, यूएनओ में हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट क्या सच में ये भारत में उच्च शिक्षा की भाषा बन सकी है? मेडिकल साइंस की भाषा, आईआईटी की भाषा, कोर्ट की भाषा, आप देख रहे हैं ना कि वहां तो अभी भी अंग्रेजी का ही डोमिनेशन है। ये बात अलग है कि अब धीरे धीरे स्थितियों में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट सक्सेस होते हैं, सबसे ज्यादा किस भाषा के लोग होते हैं? इंग्लिश मीडियम के लोग होते हैं। तो यह एक सोचने की बात तो है, तो आप इस पर विचार करें, क्योंकि तर्क या आप कह लीजिए कि तथ्य के बिना आप विचार नहीं कर सकते। तथ्य से आपके दिमाग में तर्क आते हैं और तर्क के आधार पर फिर आप विचार स्थापित करते हैं, अपना निष्कर्ष निकालते हैं। दोस्तों, आज के दैनिक भास्कर में एक एडिटोरियल कमेंट छपा है उद्योगों की जरूरत और तकनीकी शिक्षा में गैप, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति हमारे उच्च शिक्षा की। आपको ध्यान होगा कि कल भी मैंने आपको उच्च शिक्षा के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे जो संसद के वक्तव्य में कहे गए हैं, स्टेटमेंट दिया गया है संसद में। अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के आधार पर आप सोचिए कि क्या कहा गया है कि जो ITI है केंद्रों में, जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, उसमें जो प्लेसमेंट की दर है वो 1% से भी कम है, 1% से भी कम है, सोच करके देखिए। तो फिर ये क्या कर रहे हैं हमारे ITI? इनका तो काम ही है कि सीधे सीधे वो इस तरह का प्रशिक्षण दे जो काम आ सके, मतलब ये एक तरह से कौशल विकास से संबंधित है, और जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, ये सोचने की बात है। मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद 5-6 साल पुरानी बात है, या हो सकता है कि 1-2 साल और अधिक हो गए हों। हमारे जो नारायण मूर्ति जी हैं, उन्होंने जो IIT के स्टूडेंट पढ़ करके निकलते हैं उनके बारे में एक बात कही थी कि वो वहां से पढ़ करके तो निकलते हैं, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज को भी उन्होंने शामिल किया था, और उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, और 6 महीने तक तो हमें उन्हें सिखाना पड़ता है, बहुत ही बेसिक चीजें सिखानी पड़ती हैं, तब वो काम के लायक होते हैं। उनकी इस बात को सुनकर के हमारे जो चेतन भगत जी हैं वो एकदम से उखड़ गए थे, और उन्होंने फिर अपनी बात कही। लेकिन ये सच्चाई है कि अभी भी हमारी जो उच्च शिक्षा है खासकर, वो किताबी दुनिया से बाहर नहीं निकल पाई है, केवल परीक्षा पास करनी है। जबकि फॉरेन कंट्रीज में मैंने देखा है, जो भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, मैंने जो महसूस किया है, कुल मिलाकर ये कि वहाँ जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका बहुत कम रोल है, जो ज़्यादा रोल है वो प्रैक्टिकल पार्ट का है। डिस्कशंस होंगे, प्रेजेंटेशंस होंगे, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो लेक्चर्स के लिए बुलाए जाएंगे, इंटर्नशिप होगी, इन पर उनका ज़्यादा जोर है। तो स्वाभाविक है कि जब वहाँ से पढ़ करके स्टूडेंट निकलता है तो काफ़ी कुछ मामलों में उसे ध्वस्त होता है, उसको जानकारियाँ होती हैं। मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसी ने ये भी कहा था कि जो लॉ पढ़ करके निकलते हैं उन्हें एक केस अगर कोई दायर करना है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, तो एप्लीकेशन कैसे लिखना चाहिए उन्हें नहीं मालूम। ये बात अलग है कि वो लॉ के ढेर सारे उनको कानून धाराएं सब कुछ याद है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर ज्ञान नहीं है। तो ये हमारी शिक्षा की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और एक ऐसे समय में जबकि हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट कर रहे हैं अपने कैंपस हिंदुस्तान में खोलने के लिए, तो हम उन्हें कैसे कॉम्पीट करेंगे? हमें सोचना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आकर के वो हमें ध्वस्त कर दें। एक विचारणीय प्रश्न है। दोस्तों, आज के अखबारों में आपने एक और खबर पढ़ी होगी, और वो है कि टाटा ने एयरबस और बोइंग से 470 विमान खरीदने की डील की है। 470 विमान, मतलब यह अभी तक की सबसे बड़ी डील है। 470 विमान, आप सोच करके देखिए, 470 विमान कम तो नहीं होते। इसके आधार पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखिए, मैं केवल आपके अंदर वो क्षमता पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से जो घटनाएं होती हैं, जो समाचार होते हैं, आप उनका बहुत व्यापक रूप से इस्तेमाल करने के लायक अपने आप को बनाएं। अब विमान खरीद ली, बात खत्म हो गई। अभी जो विमान खरीदे गए हैं, इन विमानों का संबंध 3 राष्ट्रों से है। चलिए, विमान कहीं बनेंगे वो डिलीवर करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि जब विमान बनते हैं या गाड़ियां भी बनती हैं तो उसके पार्ट्स अलग अलग जगहों से बनते हैं। तो ये जो विमान बनेंगे इसमें अमेरिका है, फ्रांस है, और बकायदे इंग्लैंड भी है। 3 देश हो गए, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड। विश्व स्तर पर आप इन 3 देशों को क्या रेटिंग देते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, और भारत इनसे 470 विमान खरीद रहा है। तो भारत 470 विमान क्यों खरीद पा रहा है? क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, आप कह लीजिए कि एयर ट्रैफिक हमारे पास इतना ज्यादा है ना, भारत से दुनिया में जाने वाले, दुनिया से भारत में आने वाले लोग हैं, विमान का उपयोग तो इसी के लिए ही होगा ना। अर्थशास्त्र की भाषा में आप कह सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो इतना स्ट्रांग है, इतना बड़ा है। तो दोस्तों, ये जो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, आप अब थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि क्या भारत के साथ अपने संबंधों को तनावपूर्ण बनाने की हिम्मत कर सकते हैं। हिम्मत शब्द का चलिए इस्तेमाल नहीं करें, गवारा कर सकते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण हो जाएं, बेकार हो जाएं, या सुस्त पड़ जाएं, ठंडे पड़ जाएं? नहीं हो सकते ना। आप देखिए कि कैसे, जैसे ये समझौता होता है तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी से फोन पर बात करते हैं। जी हाँ, वहां की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, वहां की अगर कंपनी विमान बनाएगी तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, और कौन देश यह नहीं चाहेगा कि उनके यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिलने का मतलब है कि उनकी जो आर्थिक गति है वो तीव्र होगी, उनका आर्थिक विकास हो सकेगा, वे राष्ट्र समृद्ध हो सकेंगे, संपन्न हो सकेंगे। और उनको संपन्न बनाने में ये भारत का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो 470 विमान खरीद सकता है। अब आप देखिए कि किस तरीके से भारत की जो बाजार की ताकत है वो इन देशों को भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए मजबूर कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि भारत को भी अपनी विदेश नीति के तहत अपनी इस शक्ति को समझते हुए अपनी स्ट्रांगनेस दिखानी चाहिए? अभी मैंने शब्द इस्तेमाल किया है चाहिए, क्या भारत ऐसा नहीं कर रहा है? भारत ऐसा कर रहा है। आप अभी देखिए कि भारत जिस तरीके से, जिस आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है, अपनी बातें जितना मनवा रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। भारत अब किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, अनावश्यक रूप से झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये भारत की शक्ति है, और भारत को जो ये शक्ति मिली है दोस्तों, आपको समझना होगा कि उसके बाजार की ताकत से मिली है। एक नया इमर्ज होता हुआ भारत यहां आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, खबरों के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं 26 अक्टूबर से शुरू होंगी और 9 नवंबर तक चलेंगी। इसके लिए प्रकाश पिलवा जो जोधपुर राजस्थान के हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो प्रकाश जी, आपका मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं वेदानंद, शिवांगी पवार खानपुर हरिद्वार उत्तराखंड से, महेंद्र चावड़ा जोधपुर से, रामाशीष और सौम्या गुप्ता जहांगीरबाद उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।